हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी अब कमज़ोर नहीं है। कहीं ना कहीं तारा अच्छी तरह से जानती थी, रानी माँ उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि उनकी बेटी ने कितना बुरा समय गुजरा था। जब तारा परी परीलोक में रहा करती थी, तब उसे राक्षस ने तारा परी के जज्बातों के साथ, उसके जिस्म के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया था। कहीं ना कहीं रानी माँ इस बात की गवाह है, इस बात की साक्षी है, और वो जानती थी कि जिस दिन पहली बार उस राक्षस ने परीलोक में आकर तारा परी को मांगा था, तब उस दिन रानी माँ और तारा परी पर क्या गुजरी थी। वो दिन आज तक दोनों माँ बेटी भूल नहीं पाई थीं। तो कहीं ना कहीं कितने ही दिनों के बाद रानी माँ ने तारा परी को अब खुश देखा था, और वो नहीं चाहती थी कि अब वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में पड़े या उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की और कोई परेशानी आए। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए रानी माँ तारा परी को मना करना चाहती थी कि वो इन सब चक्करों से दूर रहे और जो कुछ भी है उसे उसके हाल पर छोड़ दे। वो बिल्कुल भी उन असुरों के बीच में ना आए और वापस पृथ्वीलोक चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रानी माँ को इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता थी कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में पहली बार कुछ खुशियों के पल आए थे और वो अमन के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन अब अचानक से इस असुरों वाली मुसीबत ने उनकी बेटी को एक अलग ही मुश्किल में डाल दिया था। इसीलिए रानी माँ तारा परी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम सब कुछ भूलकर वापस चली जाओ, यहाँ जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ मेरे पास समय नहीं है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं कुलगुरु की पूजा आराधना या नृत्य कार्यक्रम करके कुलगुरु को प्रसन्न करके उन असुरों का अंत करवा सकती थी, लेकिन अभी मेरे पास वो भी रास्ता नहीं है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर खोज निकालूंगी, तू मेरी बच्ची इन सब में मत पड़ और वापस चली जा। जैसे ही तारा परी ने रानी माँ की बात सुनी, वो उनका हाथ पकड़कर उसे कहने लगी थी, रानी माँ घबराइए मत, और आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात मेरी, तो अब आपकी बेटी अब किसी से नहीं डरती है, और शायद आप भूल रही हैं यह शक्तिशाली जिन्नातों का वंशज जिस वक्त मेरे पेट में है, जो अपने आप ही मुझे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, तो आप क्यों फ़िक्र करती है, आपकी बेटी है ना, वो सब ठीक कर देगी। तारा की बात सुनकर रानी माँ की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे आगे कुछ और कह सके, और वो बस नम आँखों से अपनी बेटी को देखने लगी थी। तभी तारा ने अचानक रानी माँ से कहा था, माँ वो राक्षस कहाँ है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, रानी माँ उसकी ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, बेटा तुम्हारा परीलोक पर कदम रखने पर उसके जिस्म में सरसराहट पैदा हो गई है, और मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा खौफ है कि जब तक तुम परीलोक पर रहोगी तब तक कहीं वो अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर ना आ जाए, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो उसका बाहर आना हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो एक पल में पूरा का पूरा परीलोक नष्ट कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, और तारा बेटी ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा, उसके बाद तुम वहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आ पाओगी, तुम सोच भी नहीं सकती हो। जब भी मैं इन सारी बातों के बारे में सोचती हूँ मुझ पर क्या गुजरती है। तभी तारा ने अपनी माँ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और कहने लगी थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ रानी माँ, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी बहुत बहादुर है और वो सब कुछ ठीक कर सकती है, और हाँ मैं उन असुरों का मुकाबला करने से पहले उस राक्षस को एक बार देखना चाहती हूँ। क्या या 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 या।
जैसे ही तारा परी ने ये कहा, अचानक से अपने आप ही वो थोड़ा सा उस राक्षस की ओर आगे बढ़ने लगी थी। तारा परी हैरान थी कि वो तो आगे चल ही नहीं रही थी, तो फिर वो आगे क्यों बढ़ रही थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी की गई विनती उसके बच्चे तक पहुंच गई है, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ी अचानक ऑटोमेटिक उसका हाथ अपने आप ही उस राक्षस की ओर बढ़ने लगा था। तारा हैरान हो गई थी और उसने फिर अपने हाथ को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया था। वो देखना चाहती थी कि आखिरकार उसका बच्चा, जो कि इस दुनिया में भी नहीं आया है, वो करना क्या चाहता था। तभी तारापरी का हाथ ऑटोमैटिक ही उस राक्षस के सीधा दिल पर जा रखा था। जैसे ही तारा ने ये देखा, वो हैरान हो गई थी और अचानक से काफ़ी सारी रंग बिरंगी रोशनियाँ उस राक्षस के अंदर से निकलकर सीधा तारापरी के अंदर समाने लगी थी। तारापरी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। उसे यकीन हो चुका था कि उसका बच्चा ही उसकी इस तरह से सहायता कर रहा था। तभी तारा हल्का सा मुस्कुराते हुए मुस्कुरा उठी थी और जल्दी ही तारा ने अपना हाथ उस राक्षस के दिल पर से हटा लिया था। तभी तारा ने देखा कि शायद कुछ शक्तियां तारा के पास आने पर उस राक्षस की शक्तियों का कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि वो जो हल्का फुल्का तारा के वहां आने से हिलडुल रहा था, अब उसका वो भी हिलना डुलना बंद हो गया था। जबकि तारा को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि तारा परी के पेट में पल रहे बच्चे ने उस राक्षस के दिल पर तारा का हाथ रखकर उसी के थ्रू उसे अधमरा कर दिया था। बल तारा जल्दी ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगी थी, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, तो इसीलिए उसे जल्द से जल्द जाकर उन असुरों का अंत करना था। तो इसीलिए तारापरी जल्दी ही वहां से निकलकर सीधा रानी माँ के पास आ गई थी। और जैसे ही रानी माँ ने अपनी बेटी के चेहरे की चमक देखी तो वो हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, बेटी, तुम्हारे चेहरे का तेज और चमक देखकर अब तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है और मुझे अब धीरे धीरे यकीन हुआ उठा है कि तुम ज़रूर विजयी होगी। तभी तारा ने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया था और जल्दी ही वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी थी। लेकिन तभी सोनल परी तारा के ठीक पीछे आ गई थी और कहने लगी थी, तारा, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, तारा हैरानी से सोनल परी की ओर देखने लगी और कहने लगी थी, तुम कैसी बातें कर रही हो? सोनल, तुम कैसे मेरे साथ जा सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो वहाँ पर कितना सारा खतरा हो सकता है। तभी सोनल परी ने तारा का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, तारा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती, जब से तुमने स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाया है कि किस तरह से बगीचे में रीत परी मुझसे मदद मांग रही थी और मैं उसे देख नहीं पाई थी, और हालांकि मुझे उसका एहसास हो रहा था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पाई थी। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी और क्यों मैंने अच्छी तरह से वहाँ पर ध्यान भी नहीं किया। अगर उस वक्त मैं अच्छी तरह से चारों ओर देख पाती तो शायद मैं रीत परी को बचा पाती। ये अपराध बोध मुझे जीने नहीं दे रहा है। तारा, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, तारा कुछ देर उसकी ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे रहोगी, बिना मुझे कहे बिना मुझे बताए तुम किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाओगी। जैसे ही तारा ने ये कहा, सोनल परी उसकी ओर हल्का सा मुस्कुरा उठी थी। जाकर उसने तारा को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, मेरी तारा, तुम मुझे कभी भी मना नहीं करेगी। और जल्दी ही दोनों परी लोक से निकलकर उन असुरों के स्थान पर जाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर मलिका अमन को अपने कमरे में ले गई थी और वहां जाकर उसने अमन के धीरे धीरे कपड़े निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि बस जल्द से जल्द वो अमन को अपना बना लेना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार जब उसने अमन को अपना बनाने की कोशिश की थी, तारा ने ऐन मौके पर जाकर उसका पूरे का पूरा प्लान खराब कर दिया था। लेकिन आज मलिका किसी भी तरह की कोई देरी नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उसने सीधा अमन से जिस्मानी रिश्ता बनाने के बारे में सोच लिया था। जल्दी ही मलिका ने अमन के सभी कपड़ों को उसके जिस्म से अलग करके उसे बुरी तरह से किस करना शुरू कर दिया था और कितनी ही देर तक वो उसे किस करती रही थी। वहीं अमित बाहर बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगा था, क्योंकि आज उसका सपना सही मायनों में पूरा होने वाला था। वेल, जैसे ही मलिका को लगा कि अब उसे अमन के साथ पूरी तरह से एक हो जाना चाहिए, इसीलिए मलिका ने एक हल्की सी चादर से अपने आप को और अमन को कवर करते हुए अपने कपड़ों, जो कि उसने नाम के कपड़े पहन रखे थे, उन्हें भी उतार कर फेंक दिया था और अमन के ठीक बराबर में लेटकर उसके साथ जैसे ही मलिका जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए बढ़ी, तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा फटाक से खुल गया था। क्या अमन मलिका से बच पाएगा? क्या तारा असुरों का मुकाबला कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।